और वैसे भी भाभी, ये बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, इस तरह के लुच्चे लफंगे गुंडे हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं। इस डर की वजह से हम बाहर निकलना तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर हमें कुछ आना चाहिए तो इनसे मुकाबला करना आना चाहिए, और इनसे किस तरह से निपटना है वो आना चाहिए। सो प्लीज़, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना ही मुझे किसी तरह का कोई डर लग रहा है। अब कहीं ना कहीं आस्था की बातों ने एंजल के अंदर एक अलग तरह का जोश भर दिया और वो अपने आंसुओं को पोंछकर दबी हुई आवाज में बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आस्था, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी। मैं जानती हूं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाती हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे किसी भी तरह का डर या कोई घबराहट बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। ये बोलते हुए एंजल ने आस्था को गले से लगा लिया था और फिलहाल जल्दी ही वो लोग घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अब सभी लड़कों का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था और सभी हाल में बैठे थे, और लड़कियां जो कि अपने अपने पार्टनर के साथ एक बेहतरीन रोमांस करने के बाद, उन सभी के गाल पूरी तरह से ब्लश हो रहे थे, क्योंकि कितने ही दिनों के बाद उन लोगों ने आपस में इस तरह का स्पेशल मोमेंट साथ में शेयर किया था और कितना ही वक्त साथ में बिताया था। इसी वजह से इस वक्त सभी बहुत ही ज्यादा खुश थीं, और तभी सभी फ्रेश होने के बाद अच्छे से खुद को बनाकर सिंगार करके बाहर आ गईं और आकर अपने अपने पार्टनर्स के साथ हॉल में बैठ गईं। नानी माँ और दादाजी भी वहां मौजूद थे और अभिमान जी भी सभी को शांत नजरों से देख रहे थे। घर का पूरा माहौल शोर और खुशियों से भरा हुआ था, एकदम भरा पूरा परिवार लग रहा था। तभी अचानक अभिमान जी के दिमाग में एक शरारत सूझी और वो थोड़ा तेज आवाज में बोले, वसुंधरा, वसुंधरा। अब वसुंधरा, जो कि मैले कुचैले से साड़ी में वहां पहले से ही किचन में काम कर रही थी, क्योंकि जब से दादाजी ने अरमान के सामने उसे नौकरानी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था और ये कहा था कि वो इस घर की नौकरानी है और घर के सारे काम यही किया करेगी, और राजेश को भी उन्होंने इसीलिए गाँव भेज दिया था ताकि वसुंधरा और वीर घर में नौकर के रूप में उसकी जगह ले सकें। फिलहाल अभिमान जी ने इस बात का थोड़ा फायदा उठाना चाहा और अपने भरे पूरे परिवार को सामने देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने फटाफट से वसुंधरा को आवाज लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो वसुंधरा से बेहद नफरत करते थे, क्योंकि जब से अभिमान जी ने वसुंधरा को अमरेश रायचंद के साथ अपने ही बेड पर देखा था तब से उनके दिल में वसुंधरा के लिए इतनी नफरत जन्म ले चुकी थी जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन उस वक्त वो कमजोर थे, हर तरह से कमजोर, ऊपर से शराब की लत ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्हें जानबूझकर अमरेश ने शराब की लत लगवाई थी ताकि वो अपने घर परिवार से दूर हो जाएं। केवल अरमान और दादाजी ही थे जो उनका ख्याल रखते थे, लेकिन फिलहाल अब उन्हें मौका मिल चुका था अच्छी तरीके से इन सब चीजों के बीच उससे बदला लेने का। अगर दादाजी अरमान के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलते तो शायद अभिमान वसुंधरा को इसी तरह से घर में रहने देता और अंदर ही अंदर घुटता रहता। लेकिन अब अभिमान जी ने मन बना लिया कि जब उन्हें फ्री की नौकरानी मिली है तो क्यों ना उसी से सारे काम करवाए जाए। तो कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ उन्होंने गहरी सांस ली और वसुंधरा को पुकारा, वसुंधरा। वसुंधरा जो कि किचन में मौजूद थी अंदर ही अंदर खौल रही थी, क्योंकि जब से अरमान के सामने दादाजी ने उसे नौकरानी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था उसके चेहरे से गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहां तो वो इस घर की महारानी बनने आई थी और कहां उसे नौकरानी बना दिया गया था। वहीं वीर तो पास में ही खड़ा होकर अपनी माँ को सवालिया नजरों से देख रहा था और वसुंधरा उससे नजरें चुड़ा रही थी। तब वीर ने आगे बढ़कर वसुंधरा के हाथ पकड़ा और झल्ला कर बोला, ये सब क्या है मॉम, मैं ड्राइवर, वो भी मैं वीर रायचंद, मेरे आगे पीछे ड्राइवर की फौज रहा करती थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर एक मामूली सा ड्राइवर और एक मामूली रामू काका बनकर सब्जी वाला काम करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा माँ, इससे अच्छा तो मैं सड़क पर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़कियों के बीच में मैं नौकर बनकर बिल्कुल नहीं रहूंगा। कहीं ना कहीं वीर को बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी कि भला इतनी सारी लड़कियों के बीच में वो नौकर बनकर कैसे रह सकता था। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। एक जमाने में वीर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके आगे पीछे लड़कियों के साथ साथ नौकरों की भी लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब सब कुछ इतना ज्यादा बदल चुका था कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो बहुत परेशान था। तब वसुंधरा ने दांत पीसते हुए उसे समझाया, अपनी फालतू की बकवास बंद कर, क्या तू भूल गया पिछले 6 महीने हमने किस तरह से दूसरों की जूठन खाकर जिंदगी गुजारी है। किसी ने हमें अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन या नौकर तक का काम भी नहीं दिया, क्योंकि सब लोग हमें पागल समझते थे। सब लोग भूल चुके थे कि असल में मैं कौन थी। क्या हुआ अगर मैं नौकरानी बन गई हूँ तो, और तू नौकर। याद रखना, नौकरानी और महारानी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बहुत जल्द मैं इस घर पर राज करूंगी, मुझे पूरा यकीन है। बस अभी फिलहाल जो हो रहा है उसे होने दे। ये सब अरमान की याददाश्त जाने की वजह से बिगड़ा है, वरना नौकर तो हम इस घर में किसी भी कीमत पर बनकर नहीं रहते। लेकिन फिलहाल हमारी जान बच गई है, यही हमारे लिए बहुत है। तो अच्छी तरह जानता है कि अरमान हमसे कितनी नफरत करता है, और अगर उसने नौकर के रूप में हमें कबूल कर लिया है तो हमें वही बनकर रहना होगा,
क्योंकि इस वक्त वो एक जख्मी शेर है, भूला हुआ शेर है। समझ रहा है ना तू मेरी बात? धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगी, फिलहाल तू मुझ पर यकीन रख। ये बोलकर वसुंधरा ने वीर को अपनी चाल में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में अभिमान जी की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो दांत पीसकर तुरंत अभिमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं बाकी सब लोग भी अब शॉक्ड होकर, स्पेशली लड़कियां, जिन्हें नहीं पता था कि वसुंधरा असल में नौकरानी बन गई है। वसुंधरा को नौकरानी के अवतार में देखते ही सब सरप्राइज हो गई थी। रौनक, राधिका, वंशिका और रश्मि आश्चर्य से वसुंधरा को देखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जो साड़ी पहनी हुई थी वो काफी एक्सपेंसिव और अच्छी खासी दिख रही थी, लेकिन अब उसे अचानक नौकरों वाली साड़ी में देखकर सब एक दूसरे का चेहरा आश्चर्य से देखने लगी और आंखों ही आंखों में बातें करने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी वहां अभिमान जी दमदार आवाज में सुनाई दी, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, जाओ सबके लिए कॉफी बनाकर लाओ, और हाँ एक काम करना, रौनक रश्मि बिटिया के लिए थोड़े फ्रूट वगैरह काट कर लेना। अब जैसे ही अभिमान जी ने वसुंधरा को सबके सामने ऑर्डर दिया, वसुंधरा की आंखें उनके शब्दों पर चौड़ी हो गई। फिलहाल वो अभिमान जी को कुछ भला बुरा कहना चाहती थी कि तभी उसे सीढ़ियों से अरमान आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए वसुंधरा ने तुरंत ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फटाफट किचन में भाग गई, क्योंकि अभी वो अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी। वहीं अरमान जो इस वक्त एक कान में फोन लगाए और हाथ में लैपटॉप संभाले आ रहा था। अब जैसे ही सबकी नजरें उस पर पड़ी, तुरंत सब लड़कियां उठ खड़ी हुईं और नानी माँ के पास जाकर खड़ी हो गईं, क्योंकि अगर अरमान उन लड़कियों को इस तरह आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान के पास देख लेता तो न जाने कितने ही सवाल पूछता। फिलहाल रश्मि आकाश से थोड़ी दूरी बनाकर वहीं बैठ गई थी, लेकिन बाकी तीनों, राधिका, वंशिका और रश्मि, नानी माँ के पास जाकर खड़ी हो गईं।
वहीं अब चारों लड़के, जिनके कानों में अभी भी अरमान की कही हुई बातें गूंज रही थीं, वो काफी परेशान थे और सभी के मुंह लटके हुए थे। ये बात लड़कियों ने भी नोटिस कर ली थी। फिलहाल जैसे ही अरमान वहां आया, उसने नानी माँ और बाकी तीनों लड़कियों पर उचटती सी नजर डाली और आराम से जाकर अपनी किंग चेयर पर बैठ गया और थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाया, वीर मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। अरमान ने वीर को रोबदार आवाज में समझाया, अब जब राजेश अपने गांव गया हुआ है तो इसीलिए अब मेरा सारा काम तुम करोगे। याद रखना, कॉफी मेरी फेवरेट है और मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, तो जाओ जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाओ। अब वीर, जो अरमान की आवाज सुनकर हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया था, उसने एक नजर अरमान को देखा और फिर उसकी नजर रौनक, वंशिका, राधिका पर पड़ी तो वो तुरंत ही शर्मिंदा हो गया, क्योंकि इतनी हसीन खूबसूरत लड़कियों के सामने इस तरह से ऑर्डर दिए जाने पर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन फिलहाल वो क्या कर सकता था, इसीलिए वो फटाफट से अरमान के लिए ब्लैक कॉफी बनाने चला गया। ये देखकर लड़कियों को हंसी आ गई। नानी माँ ने उन्हें कम शब्दों में समझा दिया था कि इस तरह से वसुंधरा और वीर को नौकर बनाया गया है, तो अब लड़कियां, जो कि कुछ ज्यादा ही चुलबुली थीं, अचानक पेट पकड़कर हंसने लगी। रौनक तो कुछ ज्यादा ही शरारती थी, वो तुरंत अरमान के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरमान भाई मजा ही आ गया, आपने शक्ल देखी थी वीर की। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे ये वीर का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। अब देखा, अरमान भाई ने जैसे ही उसे ब्लैक कॉफी लाने का ऑर्डर दिया तो उसकी बंदर जैसी शक्ल देखने लायक थी। ये बोलकर रौनक अरमान के कंधे पर हल्के से थपकी मारकर जोरों से हंसने लगी, क्योंकि जब से अरमान पूरी तरह आस्था के प्यार में था, रौनक और बाकी लड़कियां उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करने लगी थीं और उसी तरह की बातें करने लगी थीं। सभी उससे बहुत घुल मिल गए थे, लेकिन अब रौनक को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर आहान ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी। वो तुरंत ही मन में बुदबुदाया, ये क्या कर रही है ये हवा हवाई, खुद तो मरेगी और मुझे भी मरवाएगी, क्या जरूरत थी शेर के मुंह में हाथ डालने की। सीधा अरमान भाई के कंधे पर हाथ रखकर हंस रही है, अब पता नहीं भाई इसके साथ क्या करेंगे, कहीं वो इसे उठाकर अभी बाहर न फेंक दे, अगर ये इसने घर से बाहर चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। अब ये सोचते ही आहान ने तुरंत ही रोने की शक्ल बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, और वो तुरंत हड़बड़ाहट में रौनक के पास आया और उसे अरमान के पास से हटा दिया। फिर रौनक को डांटते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या, ये कैसी हरकत कर रही हो, अरमान भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें इस तरह से टच करे, और तुम खी 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 करते हुए अरमान भाई को टच कर रही हो। कहीं ना कहीं आहान खुद रौनक को डांटकर अरमान की डांट से, इनफैक्ट उनकी सजा से बचाना चाह रहा था। वहीं अरमान, जो अभी भी अपने उसी कंधे को देख रहा था जहां पर अभी रौनक ने हाथ रखा था, अचानक उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल होने लगी। जो दादाजी देख चुके थे कि इस वक्त अरमान अपना गुस्सा किस कदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक अरमान ने तमतमाते हुए अपना फोन और लैपटॉप एक साइड में रखा और उठ खड़ा हुआ, और वो सीधा नानी माँ के पास आया और उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोला, लगता है आपने अपनी बेटियों को कुछ खास तमीज नहीं सिखाई है। देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी ने आप लोगों को यहाँ रहने की इजाज़त दी है, या फिर शायद मैंने भी दी होगी, और हो सकता है कि मेरी कुछ यादें चली गई हों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी चली गई हुई यादों का इस तरह से नाजायज फायदा उठाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जैसे छोटे और गरीब लोग अपनी घर की लड़कियों का इस्तेमाल करके अमीर लोगों को फंसाने का काम करते हैं, ताकि उनका रुपया पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएं। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, भले ही आपकी ये ट्रिक्स कहीं और काम करती हों, लेकिन सिंघानिया मेंशन में आपकी ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में प्यार और शादी जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। अरमान बड़े ही चबा चबा कर नानी माँ को बातें सुना रहा था। वहीं राधिका और वंशिका ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। वहीं रौनक को तो अब अरमान की बात सुनकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे अब अपनी नासमझी पर अफसोस हो रहा था कि उसने बेकार में सब लोगों को डांट पड़वा दी। वो नानी माँ के पास आकर पप्पी सा फेस बनाकर खड़ी हो गई थी। तभी नानी माँ अरमान को देखकर नम आंखों से बोली, नहीं नहीं बिटवा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बच्ची है, थोड़ी सी नासमझ है। मैं आइंदा उसे समझा दूंगी, वो आगे से आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। कृपा करके आप उसे बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। जैसे ही नानी माँ ने रौनक की तरफ से ये कहा, आहान, आकाश, सुमित, ध्रुव सभी का दिल जैसे सीने से बाहर आने को तैयार था। वहीं रौनक की आंखें तुरंत आंसुओं से भर आईं और वो अरमान के सामने जाकर बोली, भाई इसमें नानी माँ या किसी की भी कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी गलती है। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आप हमारे पुराने वाले भाई नहीं रहे, अब आप बदल चुके हैं। ये कहते ही उसकी आंखें आंसुओं से झलक उठी। रौनक की आंखों में आंसू देखकर आहान पूरी तरह से बेचैन हो गया था, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन रौनक की आंखों के आंसू वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतना सब कुछ होने के बाद रौनक के लिए वहां रुके रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए बिना देरी किए वो वहां से निकलकर गार्डन साइड की ओर जाने लगी। जैसे ही रौनक गार्डन की ओर गई, आहान को लगा कि कहीं उसे अरमान की बात ज्यादा बुरी तो नहीं लग गई, शायद इसीलिए वो घर के बाहर जा रही है, या फिर वो इस घर को छोड़कर जा रही है। क्या वो मुझे भी छोड़कर चली जाएगी? क्या वो अपने छछुंदर को भी छोड़कर चली जाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, ओनली ऑन स्टोरी मेनिया।